ओम शांति। बोलिए 31st December 1981 31st December 1981 कुमारों के प्रति वापसी था। कुमार ग्रुप अर्थात डबल स्वतंत्र, एक लौकिक जिम्मेवारी से स्वतंत्र और दूसरा आत्मा सर्वबंधनों से स्वतंत्र, माया के बंधन और लौकिक बंधन से भी स्वतंत्र। ऐसे स्वतंत्र हो, डबल स्वतंत्र आत्माएं डबल सेवा भी कर सकती है, क्योंकि कुमारों को स्वतंत्र होने के कारण समय बहुत है, तो समय के खजाने से अनेकों को संपत्तिवान बना सकते हो। सबसे बड़े से बड़ा खजाना संगम युग का समय है। तो कुमार ग्रुप अर्थात समय के खजाने संपन्न और समय होने के कारण औरों की सेवा में भी संपन्न बन सकते हो। सेवा की सब्जेक्ट में भी 100% ले सकते हो। सदा बंधन मुक्त अर्थात सदा योग युक्त। संसार ही बाप हो गया ना। कुमारों का संसार क्या है? बाप दादा। औरों का संसार तो हद भी है, लेकिन आप लोगों का एक ही बेहद का संसार है। तो सहज योगी भी हो, क्योंकि संसार में ही बुद्धि जाएगी ना। संसार ही बाप है, तो बुद्धि बाप में ही जाएगी। तो कुमारों को सहज योगी बनने की लिफ्ट है। तो अब अशांत आत्माओं को शांति देना, भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य करते रहो। जैसे प्यासी आत्मा को पानी पिलाना पुण्य है, वैसे ही यह सेवा करना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। तो किसी भी अशांत आत्मा को देख तरस आता है ना। रहम दिल बाप के बच्चे हो, तो सदा पुण्य का काम करते रहो। बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं। कुमार अर्थात डबल स्वतंत्र। कौन सी डबल स्वतंत्रता? एक लौकिक जिम्मेवारी से स्वतंत्र और दूसरा आत्मा सर्व बंधनों से स्वतंत्र, माया के बंधन और लौकिक बंधन से भी स्वतंत्रता। ऐसे स्वतंत्र हो, डबल स्वतंत्र आत्माएं सेवा भी कैसी करेगी? डबल सेवा कर सकती है, क्योंकि कुमारों को स्वतंत्र होने के कारण समय बहुत है, तो समय के खजाने से अनेकों को संपत्तिवान बना सकते हो। सबसे बड़े से बड़ा खजाना संगम युग का समय है। तो कुमार ग्रुप अर्थात समय के खजाने संपन्न और समय होने के कारण औरों की सेवा में भी संपन्न बन सकते हो। सेवा की सब्जेक्ट में भी 100% ले सकते हो। सदा बंधन मुक्त अर्थात सदा योग युक्त। तो एक है लौकिक जिम्मेवारी से स्वतंत्र और दूसरा है आत्मा सर्व बंधनों से स्वतंत्र। कौन से वो बंधन है जो आत्मा को बांधे हुए है? बंधनों की क्या लिस्ट है? बहुत है। बंधन ही बंधन है, चार और बंधन। फिर भी संस्कार एकदम सूक्ष्म में चले गए। तो पुराने संस्कार, व्यर्थ संकल्प, ये एक और संबंध ही बंधन है। कलयुग में जो भी संबंध है वो वास्तव में है बंधन। लग रहे हैं संबंध परंतु है बंधन जिसने आत्मा को बांधा है। और उसे नाम कोई भी दो, कार्मिक अकाउंट नाम दो या संबंध नाम दो, है सभी बंधन। और संसार की लोक लाज और मर्यादा है वो भी एक रीति से बंधन ही है। और देह ही बंधन है, उसमें सब आ गया। देह, देह के संबंध, साधन, साधन भी क्या है, बंधन है। और वो बोल दिया स्वभाव संस्कार। और देह की बीमारियां, देह अगर बीमार हो जाए तो वो कितना बड़ा बंधन है। पुरुषार्थ भी नहीं किया जा सकता अगर देह बीमार है तो। कमजोरी है अगर देह में तो भी पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता है। बुढ़ापा अगर आ जाए तो भी पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे ही बंधन है। और व्यर्थ संकल्प, ज्यादा सोचना, नेगेटिव संकल्प, ये भी बंधन है। नेगेटिव बंधन, वो पॉजिटिव बंधन है, उसमें बांधो स्वयं को अपने का। इस बंधन में बांधो परमात्मा, प्रेम के, स्नेह के, सेवा के, तो संसार के सारे बंधन छूट जाएंगे। स्वार्थ वाली सेवा, ऐसी सेवा की जिसमें नाम और मान की कामना है, वो एक बंधन ही बन जाती है। इच्छाएं बहुत बड़े बंधन है। एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा चालू होती है, ये बंधन। विकारों के बंधन, सबसे बड़े बंधन कौन से है, विकार, उसमें भी लोभ, धन की कामना। धन की कामना इसलिए कि बाबा की सेवा करे, परंतु वो सेवा एक तरफ रह जाती है और बुद्धि सारी धन में चली जाती है। वो धन मिलने पर भी फिर सेवा नहीं होती उस धन से। सेवा, धन क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि सेवा करनी है धन से, परंतु वो धन कमाने की जो विधि है, जो प्रोसेस, प्रक्रिया और जो समय और जो उसके साधन और जो कुछ उसके लिए किया जाता है, वही एक बंधन बन गया। संकल्प श्रेष्ठ था कि बाबा की के सेवा के लिए ये कमाना है, परंतु वो कमाई जो है वो कमाई करने की विधि ही बंधन बन गई, उसी में फंस गए। ये एक बंधन है। और लोभ, क्रोध, मोह, लगाव, सबसे बड़ा बंधन संसार में कौन सा है, लगाव। आज बाबा ने कहा है मुरली में, संसार असार है, संसार रव रव नरक है, इस संसार से तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं, कोई काम नहीं। इस संसार से तुम्हें ना तो कोई प्राप्ति है और ना तो कोई काम है। इसके लिए संकल्प में और स्वप्न में भी इस संसार में बुद्धि ना जाए, संकल्प में भी ना जाए, स्वप्न में भी ना जाए। अगर बुद्धि विमान है, इस विमान से सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन और मूल वतन की सैर करो, क्योंकि तुम उड़ता पंछी हो, जरा भी इस संसार में लगाव ना हो। संसार असार है, याद करने जैसा वाक्य है आज के वरदान में, ये संसार असार है, इसमें ना तुम्हें कोई काम है और ना ही तुम्हारा कोई काम है और ना ही तुम्हें इससे कोई प्राप्ति है। भगवान वाच है ये, इसके लिए बुद्धि इसमें जाए ही ना। संसार में है संसार के कल्याण के लिए, संसार में है संसार में रहते हुए, यहाँ की माया से अलग रहते हुए, यहाँ की आत्माओं को संसार के बंधनों से मुक्त करने के लिए, ये एकमात्र कार्य के लिए हम यहाँ रुके हुए, नहीं तो हमारा इस संसार में कोई काम नहीं है। यहाँ की जो आत्माएं हैं उनका कल्याण करना, स्वयं का कल्याण करने के बाद बाकी इस संसार में हमारा कोई काम नहीं है। बाबा ने कहा यहां से तुम्हारा कोई काम नहीं है, ना ही तुम्हें इस संसार से कोई प्राप्ति है। राव राव नर्क है, ये नरकीय यातनाएं हैं यहां पर, इसके लिए इससे तुम्हें तुम्हारा कोई लगाव ना हो। लगाव भी एक बंधन है, मोह भी एक बंधन है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह को संसार की सब व्याधियों का मूल कहा हुआ है शास्त्रों में। टीवी पीस ऑफ माइंड, हाँ वो सब भी बंधन है ना, वो भी बंधन ही है। राइट, लोग पीस ऑफ माइंड देखने के लिए टीवी लेते हैं, परंतु पीस ऑफ माइंड रह गया एक तरफ और बाकी आ गया, क्योंकि हाथ में रिमोट है और रिमोट चलाने के लिए बुद्धि स्थिर चाहिए, परंतु बुद्धि में हलचल है तो उंगलियों में भी हलचल है। रिमोट जो है, उंगलियां उस रिमोट के ऊपर है, वो रिमोट में 10 मिनट पीस ऑफ माइंड पर बाकी भी चैनल से ये घुमाया वो घुमाया, वो देखा वो देखा, 5 मिनट वो देखा, 10 मिनट वो देखा, कहीं पर भी बुद्धि स्थिर नहीं है। देखो कोई व्यक्ति अगर टीवी के सामने बैठा है तो एक ही सीरियल देखता है क्या? कभी नहीं देखता है। ये क्योंकि ये उंगलियां का कनेक्शन इधर है, ये ही अस्थिर है, बुद्धि अस्थिर है, मन अस्थिर है, मन में विकार भरा पड़ा है, तो ये तो केवल एक बहाना मात्र है। मीडिया की अपनी सेवा है, मीडिया का अपना विस्तार है, उसका अपना महत्व है, परंतु सेवा का कोई भी साधन माया का साधन बन सकता है। इतना आसान भी नहीं है, अध्यात्म इतना सस्ता तो नहीं है ना कि कोई चैनल खरीद लो और अध्यात्मिक बन जाओ। इतना सस्ता तो नहीं है ना योगी बनने के लिए, कोई चैनल खरीद लो और योगी बन जाओ। योगी बनने के लिए जीवन देना होता है, तपस्या करनी होती है, नाचती हो उंगलियां रिमोट कंट्रोल पर कैसे किसी के मन को स्थिर कर सकती है? उसमें जो दिखाने अच्छी बात है, परंतु बुद्धि भी थोड़ी स्थिर चाहिए, नहीं तो ये देखा फिर वो देखा, वो देखा अभी अभी कोई दूसरा देखा, अभी अभी डांस, अभी अभी सीरियल, अभी अभी कोई मूवी और अभी अभी पीस ऑफ माइंड, फिर मनोरंजन, फिर कुछ, फिर संसार, फिर लौकिक, फिर अलौकिक, फिर लौकिक, फिर अलौकिक, मिक्स, इधर भी उधर भी, उधर भी इधर भी, इधर भी उधर भी, सब जगह। वो चील का उदाहरण देते, चील आकाश में ऊंची उड़ती है परंतु ध्यान नीचे मांस की तरफ रहता है। ऐसा लगेगा किसी को, देखो कैसी ऊंची उड़ान भर रही है ये चील, परंतु उसका ध्यान फिर भी नीचे ही रहता है मांस की तरफ। अध्यात्म के क्षेत्र में, योगी बनने के क्षेत्र में आकाश में ऊपर उड़ रहे, परंतु ध्यान विषय वासनाओं की तरफ, इंद्रिय सुखों की तरफ, इंद्रियों की उत्तेजनाओं की तरफ। क्या कहा?
योग की तरफ देखते हैं ना, तो वो दुनिया के लिए है, अपना योग कैसा है, एक्चुअली वो अंदर से कनेक्शन करना।
तो संसारिक जीव, संसारिक व्यक्ति जो होता है वो उस दूध की तरह है जिसमें इतना पानी मिला हुआ है, उससे खीर बनाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मिला है उसमें। जो भी करना पड़ेगा ज्यादा ही करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है उससे खीर बनना, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है उसमें, इच्छाओं का, वासनाओं का, तृष्णाओं का, इंद्रिय सुखों की आदत पड़ी हुई है। तपस्या अच्छी नहीं लगती है, वैराग जैसे शब्द सुनते ही भाग खड़े होते हैं, वैराग वाली चर्चा पसंद नहीं आती है। थोड़ी बहुत आध्यात्मिक जागृति हो गई, वो उसी लोहे की तरह है, जब तक उसे आग में रखो तो वो लाल, आग से बाहर निकालो तो फिर काला, अपना वही रंग आ जाता है। जब तक पुरुषार्थियों का संग है, जब तक मधुबन में है, तब तक अग्नि में लाल है। बाहर निकालो लोहे को, वो लोहे ऐसे क्या कहते हैं वो लोगों को, वो बंजारे जो बैठते हैं ना यहाँ, लोहार या फिर वो जो बंजारा जो बैठते हैं वो लोहे को अग्नि में रखते हैं और ठोकते हैं उसको, लाल लाल दिखता है एकदम, वो जब तक हाँ लोहार ही कह सकते हैं उनको, परंतु अग्नि से जैसे ही बाहर निकालते हैं फिर अपना जो कलर है उनका, थोड़े देर वो गर्म रहता है, थोड़े समय के बाद फिर ठंडे हो जाते हैं। जब तक तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, मधुबन भूमि पर आते हैं, आप मधुबन निवासियों के बीच रहते हैं, सेंटर पर रहते हैं, सेवा केंद्रों पर जाते हैं, तब तक लाल, घर जाते ही कौन सा कलर हो जाता है फिर, काला। ऐसी स्थिति है संसारी आत्माओं की, एकदम काला नहीं होता है। हाँ तब तो हो सकता है, परंतु मन इतना स्थिर नहीं है, उसे इतनी वैरायटी चाहिए, और संसार में जो वैरायटी है उसमें अच्छाई भी है तो बुराई ज्यादा है। अगर कोई फिल्म देख ले उसमें 3 घंटे में 2.5 घंटा सब कुछ अच्छा है, बहुत सीखने जैसी बातें हैं, परंतु आधे घंटे में ऐसा कुछ दिखाया है, मनुष्य के मन की प्रवृत्ति यह है कि जो बुरा है उसको ही पकड़ लेगा, जो भोग वासनाएं हैं उनको तुरंत कैप्चर करता है, जो अच्छी चीजें दिखाई वो थोड़ा थोड़ा याद रहेगा और जल्दी भूल जाएगा। इसके लिए सावधान। टीवी देखने वाले, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को एक चैनल, किसी को दूसरा चैनल, किसी किसी के घर में दो दो तीन तीन टीवी एक साथ है। एक बच्चा, छोटा बच्चा एक रूम में अपना सीरियल देखेगा, दूसरा बच्चा दूसरे रूम में अपना, माँ बाप कुछ और देखेंगे, इतना आसान नहीं है। रिमोट की खींचाता नहीं अगर एक टीवी है तो। साधनों के भी बंधन है, टीवी का बंधन, मोबाइल का बंधन, इंटरनेट का बंधन, हर चीज का बंधन है। कोई भी चीज बंधन बन सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं जो बंधन नहीं है। आदतें जो है वो भी बंधन है, व्यसन वो भी बंधन ही है, कुछ भी बंधन बन सकता है। अति सर्वत्र वर्जते कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जते, अगर अति में कोई भी चीज की जाए तो वो बंधन बनेगा, कोई भी चीज। तो बाबा कह रहे हैं डबल स्वतंत्र, लौकिक माया के बंधन और लौकिक बंधन से भी स्वतंत्र। मेरे क्या क्या बंधन है, दुनिया का छोड़ो, अपना सोचो कि मेरे क्या क्या बंधन है, किस किस बंधन ने मुझे बांध रखा है, कौन कौन सा संकल्प आता है वो और मैं उसमें बंध जाता हूं, और बंधने के बाद कुछ बुद्धि काम नहीं करती, फिर बेहोश सी अवस्था होती है। जैसे लक्ष्मण को बांध दिया था ना वो नाग, नागपाश, बेहोश और बंधन में, जब तक संजीवनी बूटी नहीं आई तब तक होश में नहीं आया, वो भी बंधन था। उसको भी थोड़ा अहंकार था पहले, मेघनाथ को पहली बार उसकी हार हुई मेघनाथ से, मेघनाथ काम का प्रतीक है, रावण अहंकार का प्रतीक है, मनुष्य आत्मा की काम विकार से पहले हार होती है। उसका उदाहरण लक्ष्मण है क्योंकि उसे भी अहंकार था अपना कि मैं बहुत वीर हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, निद्राजीत हूं, पराक्रमी हूं, ब्रह्मचारी हूं, अपने ब्रह्मचर्य का अहंकार था। इसके लिए मेघनाथ के हाथों पहले उसकी हार दिखाई है, वो भी ऐसी हार कि मर गया होता, टाइमली इंटरवेंशन डन बाय हनुमान, इसकी वजह से बच गया। परंतु अभी सीखा, वो जो बंधन था उससे उसने सीखा, वो जो अहंकार था उससे उसने सीखा, और अगली बार फिर मेघनाथ इंद्रजीत जो है, इंद्रियों को जीता था उसने, उसके लिए उसका नाम एक इंद्रजीत था, नेक्स्ट टाइम उसने हराया उसको। तो अहंकार के बंधन भी है, नेक्स्ट टाइम बार तो हरा दिया ना इंद्रजीत ने इसको, ऐसा उसमें दिखाते हैं। सब कुछ रूपक है, सत्य तो कुछ है नहीं, वास्तविकता उसमें केवल रूपक है, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। उसमें खाली ये दिखाया है कि लक्ष्मण का अहंकार इतना ज्यादा था, इसके लिए अहंकार को पहले गिरना पड़ा, और जब फिर वो गिरा तब उसने फिर संपूर्ण विवेक बुद्धि से उसको हराया। परंतु अहंकार होने की वजह से उसकी हार हुई। या फिर इसको दूसरे रीति से भी लेते हैं कि मनुष्य आत्माओं की पहले काम विकार से हार होती है और फिर उस वो काम विकार को हराता है, ये भी एक अर्थ लेते हैं। तो एक लौकिक बंधन, एक माया के बंधन, तो ये एक अहंकार भी एक बंधन है, मैं का बंधन। मैं भी क्या है? बंधन है। इस मैं में ही व्यक्ति जीता है, मैं में ही जन्म लेता है, मैं में ही मरता है। मैं अर्थात मनुष्यों का मैं, जो कल के वरदान में था ना, मैं मनुष्य किसको कहा बाबा ने? जो स्वयं को क्या समझते हैं? देह समझते हैं, आत्मा न। देहध्यास हिंदी में एक शब्द है, देहध्यास। देहध्यास अर्थात स्वयं के देह को ही आत्मा समझना, इसे कहा जाता है देहध्यास, जिसे बाबा कहते हैं मनुष्य, या कहते हैं मानव धर्म, जिससे सारे कर्म उल्टे हो गए हैं, क्योंकि धर्म मानव का। तो मानव धर्म या मनुष्यपन, ये सब बाबा ने कल कहा था ना, मनुष्यपन की बदबू, ये सारे जो है ये मैं के बंधन है। मैं की रॉन्ग आइडेंटिटी, मैं जो है वो आत्मा है, परंतु आत्मा को मैं ना समझ देह को मैं समझना, यह अज्ञानता है, ये जो है ये बंधन है। तो देह आ गया तो देह का सब कुछ आ गया फिर। तो मैं अर्थात यहां पर मैं के बंधन अर्थात देह भान का मैं जो है उसके बंधन। जो एक बार बताया था ना चित्रकार, एक चित्रकार की कलाकृतियां इतनी दिव्य होती है, इतनी दिव्य होती है कि सारे आश्चर्यचकित रहते हैं कि ये चित्रकार इतनी दिव्य तस्वीरें कैसे खींचता है कि जिससे एकदम सभी मंत्रमुग्ध मोहित हो जाते हैं। वो कहता है कोई भी चित्र मैं बनाता हूं तो 7 दिन लगते हैं, 7 दिन में तैयारी करता हूं, इन 7 दिनों में मैं अपने मैं को ही नाश करता हूं। पहले 3 दिन अपने श्वास को रोकता हूं, अगले 2 दिन फिर ये भी भूल जाता हूं कि ये जो चित्र मैं बनाऊंगा इससे मुझे क्या क्या फायदा होगा, कितने मुझे पैसे मिलेंगे, मुनाफा कितना होगा। अगले 2 दिन मैं ये भी भूल जाता हूं कि मुझे क्या क्या यश मिलेगा, मेरी क्या क्या कीर्ति होगी, और अंतिम दिन मेरा जो मैं है वो ही समाप्त हो जाता है, देह मैं हूं यही भूल जाता है। ऐसे 7 दिन मैं अपने आप को तैयार करता हूं, 8वें दिन फिर मैं चित्र खींचता हूं। इसलिए वो चित्र निकालते समय मेरे मन की स्थिति इतनी श्रेष्ठ होती है कि उसमें मैं है ही नहीं, वो भी संकल्प चला गया कि दूसरे इसे देखे तो तारीफ करे, प्रशंसा मिले, यश मिले, प्राप्ति हो, धन मिले, मुनाफा हो, देहभान भी समाप्त हो चुका है। ऐसी चित्त की निर्विकार और मैंपन से मुक्त अवस्था में जो कलाकृतियां बनाई जाए या कोई भी आर्ट का कोई भी काम किया जाए, कला और ललित का कुछ भी किया जाए, तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो निकालते समय मैं है ही नहीं। इसके लिए तो पिकासो, माइकलएंजेलो, इन्होंने जो कुछ खींचा निकाला, लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने जो कुछ निकाले चित्र, इनके चित्रों में एक अलौकिक आभा, एक अलौकिक प्रतिभा झलकती है जो आज तक लोगों को आकर्षित करती है, और उनके समय में इतना उसको महत्व नहीं दिया गया। परंतु ये सब बहुत कलाकार थे जो कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, परंतु फिर भी देहभान से परे रहते थे क्योंकि अपनी कलाकृतियों में इतना खो जाते थे। तो मैं का भी एक बंधन है, इस बंधन से अगर संसार का व्यक्ति भी छूटने का प्रयत्न करता है तो दिव्यता को उपलब्ध होता है। तो वह यात्री, वह राही, वह पथिक जो अध्यात्म का मार्ग में अग्रसर है, वो यदि इस बंधन से मुक्त हो जाए तो उसमें कितनी दिव्यता आ जाए। मैं का भी बंधन है। इसके लिए कल बाबा ने उसकी भी विधि बताई, अमृत वेले रूहानी एक्सरसाइज कौन सी करो, अशरीरीपन की और व्यर्थ की परहेज हो, सेल्फ कंट्रोल हो। यह है ही किस लिए, हमारा केवल ज्ञान नहीं है, हमारा योग है। ज्ञान की भी सार्थकता योग युक्त होने के लिए है। ज्यादा से ज्यादा समय योग युक्त होना, ज्यादा से ज्यादा समय अशरीरीपन का अभ्यास करना, क्योंकि सब कुछ जो होगा वह अशरीरीपन की अवस्था में होता है। केवल कोरा यह ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान की सार्थकता ही है अशरीरी होना। केवल ज्ञान की ही चर्चा करते रहना, केवल लिखते ही रहना और केवल मुरली सुनना सुनाना, चर्चा करना, विस्तार करना, मनन करना, अध्ययन करना, ये नहीं है। उन सबका लक्ष्य कुछ और है, उन सबका लक्ष्य है मनन हो, मगन हो जाना। यह योग की वह स्थिति की जिसमें योग लगाना ना पड़े, वह उसकी सार्थकता है। तो मैं का बंधन, लगाव का बंधन, मैं का बंधन, साधनों का बंधन, देह का बंधन, संबंधों का बंधन, विकारों के बंधन, काम का बंधन, काम विकार भी जबरदस्त बंधन है। भगवान इस संसार में आत्माओं को बस काम विकार से मुक्त करने आया है, उसी ने पतित बनाया है। क्रोध ने पतित नहीं बनाया है, लोभ ने पतित नहीं बनाया, अहंकार ने पतित नहीं बनाया है। क्रोध को नहीं कहा जाता है पांचवी मंजिल से गिरना या सातवीं मंजिल से गिरना। क्रोध को नहीं कहा जाता है कि काला हो गए, वो तो है, परंतु जब शुरुआत होती है तो सबसे पहला बंधन तो ये है। जब काम को भी जीत लेता है व्यक्ति, तो वैसे तो गीता में कहा हुआ है, परंतु उसके भी ऊपर का ब्रह्मा बाबा के जो अंतिम शब्द थे वो क्या थे, निराकार निर्विकार निरंकार। ये सब सूक्ष्म अति सूक्ष्म बंधन आते। जब तक काम को नहीं जीता जाता है तब तक बाकी बंधन है ये भी समझ में नहीं आता है। बाकी विकार हमने है, ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता उसी आत्मा में आती है जो काम को जीत चुका है, काम से थोड़ा ऊपर उठ गया है। जो जिसकी बुद्धि काम में ही फंसी हुई है, देह में ही फंसी हुई है, उसको ये तो समझ में ही नहीं आता है कि लोभ से भी मुक्त हुआ होना है। वो तो उससे सूक्ष्म है सारे, पहले तो इससे मुक्त होने के बाद आगे की यात्रा खुलती है। ये अगर चला जाए तो फिर संकल्प आता है कि मुझे अब जो मैं मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, मेरे अंदर मैंपन बहुत है। जो काम विकार से ग्रसित है उसको तो ये पता ही नहीं कि उसके अंदर मैं है, पहले तो उससे छूटे तब वो छूटे आगे का। वो बंधन तो देह का है, सीधा स्थूल है, सूक्ष्म, इतना स्थूल है वो, ग्रॉस। सारी बुद्धि देह में ही फंसी हुई है। यहां तो यात्रा ही चालू होती है जब देह भान से हम ऊपर रहे। बुद्धि की यात्रा आजकान और बन में, बुद्धि की यात्रा, क्योंकि तुम होता पंची हो, क्योंकि यदि बुद्धि यदि विमान है तो मूल वतन और अव्यक्त वतन की सैर करो। ये संसार असार है, परंतु कामी व्यक्ति को यह संसार ही सारयुक्त भासता है, क्योंकि यहां देह है, उसे देह ही अच्छा लगता है। भगवान की प्राप्ति तब होती है, भक्ति में कहा जाता है, जब तीन बातें हो। एक, उतना ही लगाओ जितना एक कामी पुरुष या स्त्री को देह में होता है, प्लस उतना ही लगाव या आसक्ति जितना एक लोभी, एक कंजूस व्यक्ति को धन से होता है, प्लस जितना एक मां को अपने बेटे से होता है। ये तीनों ही लगाव, तीनों ही आसक्ति या तीनों ही मोह भगवान की ओर लगा दिए जाए, तब उसी क्षण वो अवतरित हो जाता है सामने। तीनों में ही बहुत ज्यादा तीव्रता है, वो सारे ही इधर से इधर की ओर जो बह रहे हैं वो भगवान की ओर बहने लगे। हाँ, तो वो तभी भगवान सामने आता है। तो ये भी विकारों का, काम का बंधन, क्रोध का बंधन, लोभ का बंधन, मोह का बंधन, मैं का बंधन, अहंकार, मैं, ये सब बंधन विकारों के। ये पांचों ही विकार अर्थात पांच बंधन। आलस्य अलबेलापन का ये एक बंधन है, आलस्य का बंधन। फिर ईर्ष्या का बंधन, द्वेष, ईर्ष्या कहो, द्वेष कहो, ये छोटे 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 सूक्ष्म सूक्ष्म हीनता का बंधन, ये एक दूसरे प्रकार की बंधन है। हीन भावनाएं, मैं ये नहीं कर सकती, सब मुझे ही ऐसा कहते हैं, मैं ये करूंगी तो मुझे नहीं लगता कि सफलता होगी, मेरे में ही बहुत सारे दोष है। स्वयं को नीच समझना, हीन समझना, कम समझना, ये एक अलग प्रकार के, ये तो बहुत ही सूक्ष्म बंधन है। स्वयं को ही दोषी ठहराना बार बार हर चीज के लिए, मेरी वजह से ये सब हो गया, ये सेवा मेरी वजह से बिगड़ गई, रोने का बंधन, बार 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 रोना, आंसू आना, छोटी छोटी बातों ने किसी ने किसी के व्यवहार और बोल के कारण बार बार प्रभावित होना, फीलिंग के बंधन, ये कैसे बंधन है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, यहां तो ठीक चाहिए स्किन, चमड़ी मोटी वाली चमड़ी चाहिए, उल्टा घड़ा बनना होता है इधर। अब भक्ति मार्ग में ठीक है, बहुत ज्यादा भावुक रहना अच्छी बात है, परंतु इधर नहीं, यहां तो पाषाण हृदय है, मन मानस को पाषाण कर, कविता पढ़ी थी ना उस दिन, तो कठोर बनना, अपने चित्त को पाषाण की तरह बना देना, ये भी यहां आवश्यकता है, वो भी नहीं तो एक बंधन बन जाएगा, सेंसिटिव नेचर, खुद को दोषी ठहराना, हीन भावना, कम समझना, नीच समझना, ये सब बंधन है। और भी कोई बंधन है? कौन सी क्लास? ये वाली। पॉजिटिव बंधन दूसरे हैं, वो अच्छे बंधन है, नेगेटिव बंधन, ऐसे बंधन कि जिसमें समय वेस्ट हो, समय समय वेस्ट होने वाले ऐसी आदतें कि जिसमें समय चला जाए, वो भी बंधन है। जैसे कि खान पान का एक बंधन है, फिर उसमें रोज ही अच्छा अच्छा चाहिए, शौक, थोड़ा भी कम टेस्टी हो तो मूड ऑफ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कुछ भी, भूख खत्म देखते ही गए, देखा पसंद की चीज नहीं है तो कहेंगे आज भूख नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें खाने का बंधन, पनीर देखेंगे तो भूख लगेगी, और तंदूरी रहेंगे तो थोड़ी ज्यादा ही भूख लगेगी उस दिन, जिलेबी देख के तो लगेगा पता नहीं अभी कुछ करूं कि थोड़ा रूम पर भी ले जाऊं रखने के लिए शाम के लिए। कौन सी सब्जी देखकर? लौकी, टिंडा, ये देखते ही क्या हो जाता है पता नहीं, भूख ही खत्म हो जाती है। जब तक वो पूरा रस और तेल थोड़ा तैरता हुआ दिखता नहीं ऊपर, मजा नहीं आता है कोई भी चीज का। सफेद चावल देखा कि भूख खत्म, पुलाव देखा तो भूख जागृत, सूखी रोटी देखी तो भूख खत्म, थोड़ा तेल और घी लगाई हुई रोटी देखी तो भूख आग फिर से प्रज्वलित होती है, थोड़ा अचार वगैरह अच्छा मिला तो भूख जग जाती है, मूंग वगैरह देख ली तो बस भूख खत्म, अंकुरित ज्यादा भूख नहीं लगती है देखकर, थोड़ा उसको छोक सादी दाल देखी तो भूख खत्म, दाल को थोड़ा सा तड़का बिड़का लगाया तो भूख थोड़ी और ज्यादा लग गई। आत्म संयम की बात है यहाँ पर, समझ तो बहुत है, आत्म संयम, जीवन का लक्ष्य क्या है, जिनकी इंद्रिय चलायमान है, जीवन ये रसेंद्रिया अगर वश में नहीं तो जनेंद्रिया वश में नहीं हो सकती, रसेंद्रियों का संबंध जनेंद्रियों से है, जनेंद्रियों का संबंध काम से है। बहु ऋषि मुनि जो जंगल में रहते थे, कंद मूल फल खाते थे, उनको माया ने नहीं छोड़ा तो वह तपस्वी जो शहर में रहते हैं, मोबाइल जिनके पास है, सुख सुविधाएं जिनके पास है, सोचते अगर एसी कमरे में आ जाए तो बहुत अच्छा, वह योगी घूमने फिरने के लिए भी सारे साधन है, जूते है, सारे पोशाक वस्त्र है, और उनके लिए ऐसा भोजन है, पंच पकवान, 56 प्रकार का भोग, क्या ये सब करते हुए वो कर्मेंद्रियों को वश में कर सकते हैं? सभी नहीं जीतते ना, पर सभी नहीं जीतते ना, कोटों में कोई, इस परिवार में भी कोटों में कोई और कोई में कोई ही विजयी रतन बनते हैं, सब थोड़ी विजयी रतन है। वही तो परीक्षा है, क्या किसी ने जबरदस्ती तलवार रखी है गर्दन पे कि खाओ, अगर नहीं खाएंगे तो योग करने नहीं देंगे, ऐसी किसी ने शर्त रखी है तो हाथ खड़ा करो, किसने जबरदस्ती की है, किसने तलवार रखी है गर्दन पर कि अगर नहीं खाएंगे तो गर्दन तलवार से गर्दन सर धड़ से अलग कर देंगे, ऐसा किसी ने कहा है? नहीं, अच्छा ही मिलता है। बात क्या मिल रहा है उसकी नहीं है, बात है भाव की, संयम की। आज अगर वो मिल रहा है तो भी खाओ, परंतु वही अगर दोपहर में कुछ भी ना मिले उसमें भी संतुष्ट रहने का भाव चाहिए। फिर अगर रात में कुछ भी ना मिले, सूखी रोटी और दाल जिसमें दाल ही ना हो, केवल पानी, अगर वो भी मिल जाए तो मुख से बिना कोई कंप्लेंट किए हुए, बिना कुछ कहे हुए, चुपचाप धन्यवाद के भाव से, वही मन की संतुष्टता की अवस्था से अगर खाया जाए तो फिर वो खाने में भी कोई एतराज नहीं है। खाओ जो खाना है, तंदूरी खाना है, पनीर खाना है, जो खाना है खाओ, परंतु वो खाते समय भी अनासक्त वृत्ति हो, ऐसा नहीं कि मिले और टूट पड़े उसके ऊपर, वो खाते हुए भी धैर्य से, वो खाते हुए भी धीरे धीरे, वो खाते हुए भी स्वमान की अवस्था से, वो खाते हुए भी धन्यवाद और अहोभाव से। अगर वह भाव वो खाते समय है तो उस खाने में भी कोई नुकसान नहीं है, परंतु वो खाते समय अगर लालच का भाव है, कहीं खत्म ना हो जाए, खा लो पहले ही ले लो, दो तीन पता नहीं मिले ना मिले, ज्यादा ले लो, बाकी फिर वेस्ट करना पड़े तो कोई एतराज नहीं, छोड़ देंगे अगर नहीं गया तो, परंतु कम ना पड़ना चाहिए, तो क्या कहेंगे? ये सारे बंधन ही है, बंधन इतने सूक्ष्म है कि जो बंधन में है वो पहली बात तो कभी स्वीकार ही नहीं करता, मैं बंधन में हूं, कौन स्वीकार करेंगे? अहंकार को कितनी चोट लगती है कि मैं बंधन में हूं, ऐसा कोई मानेगा? भगवान कह रहा है कुमार अर्थात डबल निर्बंधन, और कोई कहे कि मैं बंधन में हूं और उसने हाथ खड़ा करे तो कितनी चोट लगेगी मैं को, योगी पने को, परंतु है मुक्त। अगर होना है तो सबसे पहले स्वीकार करो कि मैं बंधन में हूं, तब फिर प्रोसेस चालू होगी कैसे अब छूटू इस बंधन से, तब फिर ढूंढेंगे कौन है जो इससे छूटे हुए है, और उनका संग करेंगे और उनकी सलाह लेंगे कि बताओ कैसे तुम छूटे, तो फिर छूट सकेंगे। अगर हम अहंकार यदि स्वीकार ही ना करें तो वो जीवन भर वो बंधन रहेगा। अगर कोई स्वीकार ही नहीं करता है कि मैं अभी तक भी काम विकार से पीड़ित हूं 20 साल के बाद भी इस ज्ञान में, तो वो मुक्त भी नहीं हो सकता है। ढूंढो उन आत्माओं को जो इससे छूटी है, वो कुछ राह बताएगी।